समझ से शुरू करना चाहिए। गाथा के रूप में पढ़ा जाता वो तो खैर आ जाएगा अपन को, लेकिन ये जिस तरह पढ़ा जाता है वो तो प्रैक्टिस की
थोड़ा सा ये जानना चाहिए कहाँ में दिल को खोलना है, कहाँ में।
हाँ ये चीज़ हो सकती है दिल, जैसे जहाँ भी अपने को इसमें ये देख लें, जहाँ पृथ्वी तत्व है वहाँ पर तो हमें रुकना ही पड़ेगा, वो तो हम वैसे भी रुकते हैं। अपन सामान्य रूप से पढ़ के भी देखेंगे तब भी जहाँ पृथ्वी तत्व होगा वहाँ पर हम रुकेंगे जरूर, उसके बिना बन ही नहीं सकता। जैसे नमो शब्द में जो है वो ओ शब्द भूमि तत्व है, पहले इसमें लिया हुआ है नमो अरिहंताडम, तो अपने आप ही नमो पर भी जोर पड़ा, ताडम पर भी जोर पड़ा। इस तरह से या तो हमें स्टेबिलिटी के लिए पृथ्वी तक पर रुकना पड़ेगा या कि वायु पर अधिक सांस लेने के लिए रुकना पड़ेगा, दो जगह। तो ताडम में ता जो है वो वायु है, आ नम तो आ फिर वायु हो गया, दो वायु होने से अपन को ता बहुत देर तक, तो नम में सीधा आकाश में जैसे छोड़ दी हो कोई चीज वैसे छोड़ देना है एकदम। इस तरह नमो सिद्धा, अब दा जो है वो पृथ्वी आ गई, उसके बाद वायु आ गई तीर, तो वहाँ अपने आप ही रुकना हो गया, नम एकदम छूट गया। सिद्धि में दो एक अग्नि है ना, ई अग्नि है, इसी तरफ नमो आयु अपने आप ही आ गया इसमें। अब चूंकि माँ पर हमने ओ पर जो है हमने पृथ्वी तत्व लिया था, अब एकदम आई आया है तो आ में वायु तो है पर उतनी ज़्यादा नहीं लेंगे हम। अगर कोई व्यंजन जुड़ा होता और एक और डबल होता तो डबल वायु होगी तो भी हमें रुकना पड़ेगा, पृथ्वी होगी तब भी रुकना पड़ेगा, ओ में पृथ्वी है तब भी रुके हम, वायु ज़्यादा लेना थी तब भी हम रुके। नमो आयु नमो वच अपने आप जा वच झा, अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी कि झा पर हम अगर ज़्यादा जोर दे देंगे तो या को यानम को हम ठीक से निर्वाह नहीं कर पाएंगे, इसलिए झा में दीर्घ होने के बावजूद भी हम ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देंगे यानम। नमो वच्छाया नमो लोई संवसा, अब इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि पूरा वाइब्रेट होना चाहिए, क्योंकि ये जल वायु जल वायु जल इस तरह से वाइब्रेट अपने आप ही होता है, क्योंकि बहुत सारे आधा वा तो कैसे बोलेंगे, अपने आप ही उतार चढ़ाव उसमें दीर्घ इस तरह। तो दीर्घ वो कहलाते जिसमें कि जैसे दीर्घ ई है दीर्घ आ है, तो इसमें तो कहीं पर भी दीर्घ आई है, दीर्घ ई तो है नहीं, आयरी समूह ह्रस्व है या, तो या पर हम तो इस तरह से दीर्घ ह्रस्व का इतना। और नमो लो ए भी जो है दीर्घ कहलाएगा, और लो ए दोनों दीर्घ हैं इसमें, तो नमो लो ए सम सा पर जो हमने ज्यादा बदल नहीं दिया, ऊपर जाना है क्योंकि सा में जो है एक वायु है और सा अपने आप में पृथ्वी है, नहीं जल है, जल और वायु है इसलिए वाइब्रेटेड है, ठीक इस तरह ये होगा। इसकी तो धीरे धीरे जो है वो प्रैक्टिस करने के बाद ही ये चीज बनती है, और बहुत शांत से और एक बार फिगर भीतर अपने बन जावे कि कहाँ हमें रुकना है, कहाँ उतार चढ़ाव, आप देखेंगे कि अपने आप ही उसी प्रक्रिया को करने में ही मन इतना एकाग्र हो जाएगा, यहाँ वहाँ जाने का मन ही नहीं, वो शब्दों में ही हम मैंने उसकी ध्वनि और उसकी वर्ण विन्यास, इस वर्ण विन्यास और ध्वनि में ही हम एंगेज हो जाएंगे कि एकदम शांति, जबकि अभी हमने उसमें से कोई फिगर नहीं निकाला है, उसमें से कोई हमने उसका मैंने एक शेप नहीं बनाया है, इसके इसके पहले ही बहुत कंसंट्रेशन है। तो अगर ऐसा पढ़ें
जी हम जब आपके साथ बोलेंगे तो कुछ तो हम लोगों को चार्ज करना आ जाएगा।
गौर से सुनिएगा तो फिर बोलेंगे। क्या होता कि अगर आप सामूहिक बोलेंगे तो आप कैसा बोल रहे हैं जी आपको पता तक नहीं लगेगा। मैं बुलवाऊंगा भी तो लगेगा कि हाँ ठीक बोल रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत आप कैसा बोलते हैं ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज़्यादा हो तो आप टेप में टेप करें और फिर सुने उसको कि मैं किस तरह से बोलता हूँ, तब जी। हालांकि इतनी प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपन खुद ही बोलने लगेंगे तो जहाँ दीर्घ है जहाँ रश। और एक चीज़ और है कि अगर ठीक नहीं होगा तो फायदा नहीं होगा। अगर जब तक ठीक उच्चारण नहीं होगा तब तक अपने को भीतर जो है उसके कोई लाभ नजर नहीं आने, नहीं तो एक ही बार पढ़ने में पता लगेगा ठीक होगा अगर हमने ठीक ढंग से उसका उच्चारण कर लिया, नहीं तो सैकड़ों दफे। तो कोशिश करिए जिस समय आपको लगे कि हाँ ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बस फिर उसी की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, उसी के अनुसार करिए। आप एक चीज़ और है कि आपकी रिदिम किस में बनती है, आपके भीतर की भी एक रिदिम है, उसके साथ आपकी नमोकार की क्या लय बनती है। मैं जिस लय में गाता हूँ वो राग मालकोम से, ये जो मुझे मालूम नहीं था, और ये बाद में जब राग गाने वालों ने बताया कि आप जो गाते हैं राग मालकोंश है। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि की खोज की गई है, राग मालकोंश में होती तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि, और नमोकार राग मालकोंश में अगर गाया जाए तो ठीक वैसे ही इम्प्रेशन होगा, ऐसा लगेगा कि उसको वही वैसी उच्चारण होगा जैसे वो भगवान के उसमें ध्वनि में आती है वो चीज़, तो वैसे ही ओंकार ध्वनि होती होगी उस समय। तो सब लोग बिल्कुल राग मालकोंश सुन करके बेशुद्ध हो जाता है अगर एग्जैक्ट राग मालकोंश सुन ले, एकदम कहीं ऊपर ऊंचाई पे पहुंच जाएगा उसको, लगेगा प्लेजेंट फील होगा। कितना भी थका होगा तो राग मालकोंश का अपना शिव रंजनी भी राग है, ये रागे हैं इन अपने हर व्यक्ति की अपने अपने वो भी रहती 40, तो अपनी एक रिदिम उसके साथ नमोकार जोड़ जाए कि किस तरह पढ़ने से मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपन लोग जो है ऐसे मन में पढ़ना शुरू कर देते हैं, नहीं अपन को प्रैक्टिस करना चाहिए पहले सही उच्चारण जोर से पढ़ने की, ताकि भीतर उच्चारण हमारा हो तो वैसा ही उच्चारण जैसा कि हम बाहर कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन। इस तरह से उच्चारण की भी प्रैक्टिस अकेले कहीं बैठ गए और आराम से जो लाउडली भी नहीं करना, लेकिन इस तरह से कि हमें सुनाई पड़ जाए और इसी को देखें कि कैसा बोल रहा हूँ। ये ऐसा उनका कहना है कि समुषण में जो निरंतर राग ध्वनि खेती रहती थी वो राग मालकोंश ऐसा अभी संगीतकारों ने किया है।
जो पूरे नमोकार मंत्र से जो पूरी ध्वनि उत्पादित होती है वो भी उसी राग,
उसकी राग किस राग पे होना चाहिए, प्लेजेंट फील होगा राग मालकोंश में उनका। कोई भी चीज़ गाई जाएगी या कोई भी मंत्र पढ़ा जाएगा तो वो राग मालकोंश में अगर होगा तो अपने आप, क्योंकि मुझे तो कोई मालूम नहीं है कि किस राग में बोलता हूँ, तो उन्होंने बताया कि नहीं इसमें अधिकांश जो है इस वजह से उसने इम्पैक्ट हुआ। श्रम
साथ
हम एक दिन आपको अगर आप चाहें तो ये घड़ी रख लें, हम आपको 108 बार 3.5 मिनट में पढ़ के बता देते हैं, तो आपकी संडे मिट जाएगा आपको कि क्या करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, फास्ट है क्या इसमें प्रॉब्लम है, फास्ट पढ़ रहे हैं यार, फास्ट में उतने अलर्टनेस चूक नहीं जाना चाहिए, और स्लो पढ़ रहे हैं उतना ही कंसंट्रेशन है कि उस बीच कोई विचार नहीं आना चाहिए। फास्ट में ये ध्यान रखना है कि बिगड़े ना, और स्लो में ये ध्यान रखना है कि कोई मिथ्या विचार ना आ जाए, क्योंकि नमो अहंताणु मैं एक घंटे तक नमो अहंताणु कहकर के चुप रह जाऊं तब भी मेरा दिमाग यहाँ वहाँ नहीं जाए, नमो सिद्धाणु कहूँगा जब जाने लगेगा। अब अगर मुझे फास्ट करना है तो नमो स्लो करते जाऊंगा उतना फास्ट होगा, जितना भीतर भीतर स्लो करूंगा जितनी लाउडली बोलूंगा उतना, जितना स्लो करते जाऊंगा बिल्कुल एकदम इतना फास्ट हो जाएगा, कहीं कोई मिस्टेक भी नहीं होगी कि कहीं हमने उच्चारण भंग कर दिया। लेकिन आप घड़ी देखते रहिएगा, अगर आप सुन रहे हैं तो 4 मिनट लगेंगे, अगर आप नहीं सुन पा रहे मेरी आवाज़ तो 3.5 मिनट लगेंगे। ये अलर्टनेस, उसमें भी अलर्टनेस, दूसरे तरह की इसमें अलर्टनेस है कि स्लिप नहीं होना चाहिए, और नमोकार का फिगर बनते जाना चाहिए, इतना क्विक होना चाहिए, इतना फास्ट होना चाहिए कि नमोकार का फिगर बन रहा है मेरे दिमाग में, तो नमोकार चल रहा है, कोई शब्द स्लिप नहीं हो रहा, सारी चीज़ें। तो टाइम फैक्टर इसमें मेन नहीं है, इसमें उच्चारण और कंसंट्रेशन, जितनी अलर्टनेस होगी उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन। क्योंकि बिल्कुल एकदम सावधानी रखना है कि नमोकार मंत्र जो है लगातार पढ़ते चले जा रहे हैं और 108 बार पढ़ना है और बीच में एक भी स्लिप नहीं होना चाहिए। तो भक्त श्रम सांप्रदायिक है फास्ट। नमोकार क्या पूरे द्वादशांग को एक अंतर मुहूर्त में शुद्ध केवली कथन करते थे। क्या होता है द्वादशांग जो कि ये 150 ग्रंथ हैं, ये द्वादशांग का कहना चाहिए एक अंश का भी अनंतमा भाग है। अनंतमा भाग ये जो अपने पास ग्रंथ है इन सबको एक अंतर मुहूर्त में पढ़ करके और उच्चरित करके समाप्त कर दिया। क्या होता होगा ज्ञान इतना फास्ट, एक अंतर मुहूर्त में पूरा का पूरा लिखकर रख दिया। द्रव श्रुत की तरह से गंधर्व भगवान ने कह दिया और भूत करके रख दिया, मतलब ग्रंथ के रूप में पूरे द्वादशांग। ये सिर्फ जो है अपने उसका अलर्टनेस कर, इसलिए उसको ऐसा मत बनाइएगा कि फास्ट कर रहे हैं तो गलत है या स्लो कर रहे हैं तो गलत है। नहीं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता। हाँ, वो लपसी नहीं जाना चाहिए कि गड़बड़ भी होता झारा और जल्दी वो वैसा नहीं होना चाहिए एकदम जल्दी से पढ़ लिए। एकदम एग्जैक्ट उच्चारण भी हो और फास्ट हो तो दोनों चीज है उसमें। इसलिए आपको दिक्कत होती कि मेरा जितनी देर में लोग नौ बार, जब मैं शांति से पढ़ूं नौ बार तो अलग बात है, जब मुझे फास्ट पढ़ना होता तो पूरा नौ बार। मैं इतनी हैबिट में आ गया है कि आपसे बात कर रहा हूँ मैं नमोकार दीपक पढ़ रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ मैं नमोकार पढ़ रहा हूँ। आप आश्चर्य करेंगे, अगर कोई ये मशीन होती हो और वो लगा लेवे तो वहाँ नमोकार फील होगा जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कंटिन्यू। क्योंकि हमें तो प्रैक्टिस ही ये करनी है कि अगर हमारी मेंटली जो है हम कहीं कभी गाफिल हो जाएं तो भीतर नमोकार निरंतर चलता है। हमें तो 24 घंटे सोते समय भी हमें नमोकार करके सोना है और बीच में अगर उठे तो नमो निरंतर नमो, आँख खोली है तो नमो निरंतर नमो, आँख नीची है तो इतना हैबिट में डाला जाता है नमोकार एक साधु को। यही अलर्ट सोते हुए भी हमें जागना, तो कैसे साधेंगे कैसे साधेंगे? हम नमोकार मंत्र से जाग सकते हैं, नमोकार मंत्र से सो सकते हैं। 5 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे हम सो जाएंगे, और अगर हमें हम सो जाएंगे तो हमें 2 बार पढ़ के सोना है तो हम 2 बार पढ़ के सो जाएंगे। हमको इतना जरूरी नहीं है कि हमें नींद लाने के लिए कुछ करना, हमें नींद अगर लानी है तो हम 2-3 बार नमो से सोच लेना है कि 3 बार नमोकार पढ़ूंगा वो नींद आ जाएगी, तो 3 बार नमोकार पढ़ूंगा और सो जाएगा। और मुझे ये फिक्स घड़ी फिक्स कर देनी है कि इतने बजे मुझे उठ जाना है और उठते ही साथ मुझे इतने नमोकार करना है, तो उठ जाऊँगा इतने बजे एग्जैक्ट घड़ी में 2-5 मिनट पहले और एकदम बिना अलार्म के जो है आ जाएगा। ये क्या समझ में, ये अलर्ट, इसी को अपने यहाँ पर अप्रमत्त करें। तो जो जितना अप्रमत्त होगा उसका उतना फास्ट होगा, उतना उतना स्लो भी हो। पहले हम लोगों को प्रैक्टिस कराई गई कि 1 नमोकार 2.5 घंटे में करो। 1 नमोकार क्या होता है, 1 नमोकार 2.5 घंटे का क्या करेंगे हम? तो वो सब सिखाया जाता है कि किस तरह से सवा, और वो भी ऐसे नहीं बैठ करके नहीं, बैठने में तो जबकि आ सकते हैं खड़े होकर के 2.25 घंटे के उत्कृष्ट सामायिक, लेकिन 1 बार नमो कर पढ़ना सिर्फ नमो अहंकानो, और अब करते रहो आराम से विचार फिर सिद्धांत, और आखिरी में जाकर के पूरे 2.25 घंटे के बाद कहना नमो बोलो सब सा। वो बीच वाले गैप में इसी का चिंता निरंतर, ये भी एक प्रोसेस है। मैं आज 3 चीजें टच कर रहा हूँ, ये आपने क्वेश्चन कर दिया। एक आता है योग शब्द, अपन कहते हैं योग, योगा कर रहे हैं या योग कर रहे हैं। एक्चुअली योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना, प्लस सामान्य अर्थ है जोड़ना या कि संयुक्त करना, मिला देना। अपने यहाँ पर योग का एक अर्थ है मन वचन काय की सक्रियता, है ना, काय वांग बना कर्म योगा, ऐसा कहते हैं ना, मन वचन काय की सक्रियता का नाम ही योग है। तीसरी परिभाषा योग की बनाई है चित्त वृत्ति निरोधा योगा, पातंजलि योग है, चित्त वृत्ति का निरोध कर देना योग है। चौथी परिभाषा बनाई है कि बाहर भटकते मन को पकड़कर भीतर ले जाने की प्रक्रिया का नाम योग है। और पांचवी परिभाषा है समाधि या ध्यान की अवस्था को भी योग कहते हैं। ये सब जो है वो योग के विभिन्न विभिन्न पहलू हैं। तो अगर अपन कोई कहे कि योग क्या है, जैन योग कहते हैं, तो हम जैन ध्यान को ही जैन योग कहते हैं। हमारे यहाँ पर निर्विकल्प समाधि का नाम ही योग है, निर्विकल्प अर्थात किसी भी प्रकार का हमारे मन में विकल्प ना, विकल्प मतलब है ज्ञान की चंचलता, इसको बोलते हैं विकल्प। सामान्य रूप से ये सोचूं कि ये सोचूं कि ये सोचूं, नहीं, कोई प्रकार का सोच नहीं, जो आ रहा है उसे सिर्फ देख रहा हूँ उस सोच को, और अपनी तरफ से कुछ नहीं सोच रहा हूँ, यही निर्विकल्प दशा है। कोई हमारे मन में सोचने का विचार नहीं है कि मैं ये सोचूंगा, जो आ रहा है उसे सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बन के देख रहा हूँ, ये अपने अपर योग की प्रक्रिया में शामिल है। दो तरह का योग होता है, एक राजयोग होता है और एक हट योग। राजयोग में आध्यात्मिक जागृति होती है, हट योग में शारीरिक जागृति, शरीर के सब चक्र जो है जाग जाते हैं और व्यक्ति चाहे तो उनका उपयोग कर सकता है चाहे तो उनका दुरुपयोग कर, दोनों चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है। शारीरिक दैहिक शक्ति जागृत हो जाती है हट योग के द्वारा, और आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है राजयोग के। तो हमारे यहाँ पर राजयोग को महत्व दिया गया है, हट योग को नहीं दिया। हमारे यहाँ पर कायोत्सर्ग और भेद विज्ञान को ही योग माना गया, ये दोनों टर्म हम पहले पढ़ चुके हैं। शरीर से आत्मा को पृथक देखने की प्रक्रिया हमारे योग में शामिल है। हम योग की या ध्यान की स्थिति में क्या करते हैं, तो शरीर को अपने आत्मा से पृथक देखने की प्रक्रिया करते हैं, या फिर अपने को अपने से जोड़ने की, आत्मा से जुड़ने की प्रक्रिया योग, जुड़ने का नाम योग है। तो हमने अपने आत्मा से अपने को जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं, अपने आत्मा में स्थिर होने की प्रक्रिया कह लीजिए, अपने आत्मा से जोड़ने की प्रक्रिया कह लीजिए, शरीर से अपने को सेपरेट, या तो शरीर से सेपरेशन या कि अपने से जुड़ना, दोनों एक ही चीजें हैं। इसी को अपन भेद विज्ञान कह लें या कायोत्सर्ग कह लें। भेद विज्ञान में सेपरेशन है, कायोत्सर्ग में शरीर से पृथक्करण है, ये दोनों प्रक्रिया है, और योग का अर्थ है अपने से जुड़ना। तो इस तरह से ये हमने चार प्रकार के योग या ध्यान की बात करी है अपने जैन दर्शन में। जो हम निरंतर अपने लिए पीड़ा में डालते हैं वो हार्द ध्यान है, जो हम निरंतर दूसरे को पीड़ा में डालने की प्रक्रिया करते हैं वो रौद्र ध्यान है, जो हम अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ करते हैं वो सब धर्म ध्यान है, जो अपने आत्म कल्याण के साथ पर कल्याण के लिए करते हैं वो सब शुक्ल ध्यान है। इस तरह से चार अगर अपन डिवाइड करें, अपने को पीड़ा में डालना हार्द ध्यान, दूसरे को पीड़ा में डालना रौद्र ध्यान, अपने लिए कुछ हित में अपने हित में करना धर्म ध्यान, सबके हित में करना शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान में सबका हित होता है, केवली भगवान करते हैं शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान जिससे कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए और अपना आत्मा का कल्याण तो होता ही है शुक्ल ध्यान। तो इस तरह से ये चार प्रकार के ध्यान, जिसमें से दो बुरे हैं दो अच्छे, आठ ध्यान रोग ध्यान अपन कई बार समझ चुके हैं, शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान अच्छे हैं। ये शुक्ल मतलब जिसमें कि हम अपनी धवलताओं को प्राप्त करें, जिसमें हम अपनी उज्ज्वलताओं को प्राप्त करते हैं वो शुक्ल ध्यान, और जिसमें हम अपने मन को अशुभ से बचा करके शुभ में लगाते हैं वो सब धर्म ध्यान। ये इस तरह से दूसरे अपने हित के लिए जब चिंतित होते हैं। तीन शब्द और आते हैं जो आपने टच किया, एक प्रेक्षा ध्यान चला है, एक विपश्यना है और एक समीक्षण, ये तीन चीजें डेवलप हुई। तो प्रेक्षा ध्यान के प्रवर्तक आचार्य तुलसी, प्रेक्षा ध्यान की प्रवर्तना उन्होंने सबसे पहले करी, वो अभी लेटेस्ट है, सब मुश्किल से 50-60 पुरानी है। प्रेक्षा का मतलब होता है प्रकट ईक्षा, चित्त में बहुत गहरे बैठ करके आत्मा का दर्शन करना, ये कहलाता है प्रेक्षा ध्यान। प्रकट शिक्षा बहुत बड़ी प्रकार से देखना, कहाँ जाकर के बहुत गहराई में चित्त में जाकर के आत्मा का दर्शन करना है, तो वो आत्मदर्शन की प्रक्रिया है, लेकिन बहुत गहराई में जाकर के सामान्य रूप से अपन देखते हैं चीज़ों को वो दर्शन है, और जब हम अपने में बहुत गहरे बैठ करके अपने आत्मा को देखते हैं वो प्रेक्षा है। विपश्यना, विपश्यना को भी बहुत विशेष रूप से पश्यति, विपश्यना, विपश्यना का मतलब भी यही है कि अपने आत्मा को बहुत गहराई में देखना, यही विपश्यना। तीनों सिनोनिम्स हैं, विपश्यना कह लीजिए, प्रेक्षा ध्यान, समीक्षण मन को समत्व में ले जाना, समीक्षण ईक्ष धातु भी देखने के अर्थ में आते हैं, समान रूप से देखना मतलब इक्वलिटी में समता पूर्वक देखना, दृष्टि में समत्व आ जाना, ये समीक्षण कहलाता है। ये भी ध्यान जो है अभी अभी श्वेतांबरों में डेवलप हुआ है, ये दो श्वेतांबरों के हैं। विपश्यना ध्यान जो है बौद्ध दर्शन का है, बौद्धों में ध्यान को विपश्यना कहते हैं, और प्रेक्षा और समीक्षण ये श्वेतांबर मान्यता में है, दिगंबर मान्यता में ध्यान को ध्यान ही कहते हैं, और पतंजलि में इसको योग भी कहा है। ये इस तरह से योग ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, समीक्षण, विपश्यना, ये सब लगभग सिनोनिम्स हैं, सबका एम यही है कि अपने आत्मा का दर्शन, हमें शरीर से पृथक किसी आत्म तत्व का, उसके लिए ये प्रोसेस है। इतनी चीज और अपने को ये ध्यान के चैप्टर में समझने की थी कि कभी इन बात में बहुत है डिटेल, तो बहुत मैं सिर्फ शॉर्ट में कुछ चीज़ें टच कर रहा हूँ, डिटेल अपन जाएंगे एक एक चीज़ का तो बहुत है डिटेल, पर कभी आप पढ़ेंगे तो
मैथडोलॉजी
है उस मेथड में जाएंगे तो भी जरा फिर उनके हिसाब से वो तो हर एक ध्यान के लिए एक ध्यान रखें अपन कि सिर्फ जैन दर्शन के अनुसार जैन ध्यान में प्रदीक्षा नहीं लेना ध्यान के लिए, बाकी सब के यहाँ बौद्ध में भी लेना पड़ेगी, श्वेतांबर मंत्र प्रेक्षा ध्यान की दीक्षा लेना पड़ेगी, समीक्षण की दीक्षा लेना पड़ेगी, उपासना की दीक्षा लेना पड़ेगी, योगा की दीक्षा लेना पड़ेगी आपको, लेकिन ध्यान धर्म ध्यान की कोई दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं, धर्म ध्यान आराम से धर्म ही करिए आपको आर ध्यान रौद्र ध्यान से बचिए और धर्म ध्यान में लगा लीजिएगा मन को, कभी तकलीफ होने लगे तो ये विचार करिएगा कि मेरे जैसे सबको तकलीफ देती है क्या करें, कर्म का फल है, लीजिए विपाक विजय नाम का धर्म ध्यान होगा घर बैठे, कर्म के फल का विचार करने का नाम विपाक विजय, इससे बचने का उपाय यही है जो कि मुनि लोग मुनि महाराज जी लोग करते हैं, संता धारण करते हैं, दुख सुख में सब समझ करते हैं, यही उपाय है मोक्ष मार्ग का उपाय है, तो खाने पर ऐसा विचार कर लिया विजय नाम को, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो जानते भी नहीं हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आती, हमारा तो ज्ञान कमज़ोर है, लेकिन क्या करें जो भगवान ने कहा है सो ही सच्चा है और हम नहीं जानते आज्ञा विजय, जब कुछ समझ में नहीं आए तब तुरंत विचार करना कि जो भगवान ने कहा वही सच्चा है और हमारे ज्ञान में आता नहीं, आज्ञा विजय फिर बैठे आप आराम से ध्यान कर सकते हैं, ये ध्यान तो निरंतर किए जाते हैं, और संस्थान विजय धर्म ध्यान में तो कभी आपका मन बने तो तीन लोग के बारे में विचार करिए कि इस पूरे लोग के बीच में जो कि अपने आप बना है मेरी क्या है, मैं कहाँ निरंतर मरता रहता हूँ इस पूरे लोक में, संस्थान विजय धर्म ध्यान, तो ये चारों ध्यान बहुत आसान है। इसके बाद जो मोक्ष के लिए जो ध्यान किया जाता है वो शुक्ल ध्यान है, वो तो रत्नत्रय के साथ ही वो आज के समय भी संभव है, मुनि महाराज जी को भी शुक्ल ध्यान संभव है, सिर्फ धर्म ध्यान विचार, ये इतना मेरे ख्याल से ध्यान के बारे में पर्याप्त है। आज गुण स्थान के बारे में भी चर्चा आया था, मैं उसको अगली बार गुण स्थान के बारे में तो मैंने लिखा है नहीं, गुण स्थान में प्रतिमाएँ लिखवा दी, गुण स्थान भी लिखवा दूँगा क्योंकि ये बहुत चलता है, कहते ना छठे साथ में पहुँच गया, निर्मल जी ने भी दो तीन सुबह सुबह छठे साथ में लिखा तो वो समझ में नहीं आता कि क्या छठा क्या सातवा इस तरह का, ये एक आदमी आज मैं सोच रहा था कि संपूर्ण जैन समाज सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से कब से डिवाइड हुआ और कैसे डिवाइडेशन हुआ और अलग अलग लोगों ने किस तरह उस डिवाइडेशन को माना, कितने मत मतांतर बने, ये अपन थोड़ा सा टच कर ले, तो पूरा जैन समाज सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से दो भागों में विभक्त हुआ, दिगंबर और सिख, दिशाएं ही जिसके अंबर हैं वो दिगंबर है, जिसने अंबर की तरह श्वेत वस्त्र धारण किए वो सिख, और कोई बड़ा इसका अर्थ नहीं था। सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी के मुक्त होने के बाद 609 वर्ष के बाद यानी विक्रम संवत 139 में दिगंबर संप्रदाय अलग हुआ श्वेतांबर से। कोई कहते हैं कि दिगंबर संप्रदाय की उत्पत्ति हुई, श्वेतांबर कहते हैं कि दिगंबर संप्रदाय की उत्पत्ति हुई, दिगंबर कहते हैं कि श्वेतांबर संप्रदाय की उत्पत्ति हुई, दोनों इस बात को मानने तैयार नहीं है कि हम बाद में आए हैं, वो कहते हैं हम पहले से थे, आप 609 साल के बाद में आप अलग से बने, दिगंबर आप बने, और श्वेतांबर कहते हैं दिगंबर कहते हैं कि नहीं हम तो पहले से थे, श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हुई है, ये भ्रम है, आप इसको किस तरह किसको लेना है ये अपन कुछ नहीं इसके बारे में कहेंगे, पर दोनों के बीच डिवाइडेशन हुआ है ये भगवान महावीर स्वामी के 609 वर्ष यानी विक्रम संवत 139 में जाकर के हुआ। एक जगह पर लिखा हुआ है भाव संग्रह जो दिगंबर ग्रंथ है कि विक्रम की मृत्यु के बाद तो विक्रम संवत 139 उसके बाद ही हुआ है, सौरठ देश में बल्लभ नगर में पहली बार श्वेतांबर का उदय हुआ और ये श्वेतांबर मान्यता के अनुसार भी सही है, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों मान्यता के अनुसार यही है कि हाँ पहली बल्लभ नगर में सौरठ देश के वाचना हुई थी जिसमें कि दिगंबर और श्वेतांबरों ने कुछ मान्यताओं को लेकर के डिवाइडेशन कर लिया था, जैसे सबसे बड़ी मान्यता थी कि स्त्री मुक्ति हो सकती है, इस पे दिगंबरों ने कहा था कि नहीं, उसी भाव से नहीं हो सकती, आगामी जीवन में प्रयास करें तो पुरुष होने पर ही वो मुक्ति होगी। दूसरी मान्यता में भेद हुआ ये कि वस्त्र सहित मुक्ति हो सकती है, तो दिगंबरों ने कहा कि वस्त्र सहित मुक्ति नहीं हो सकती। और इस तरह दो मान्यताओं में भेद हुआ। डिवाइडेशन बता रहा हूँ, ये तीसरी बात पर डिवाइडेशन हुआ कि केवली भगवान भी भोजन करते हैं। दिगंबरों ने कहा कि नहीं, केवली भगवान कबलाहारी नहीं होते। श्वेतांबर मान्यता में है कि केवली भगवान भी कबलाहार करते हैं, ग्रास बना करके खाते केवल ज्ञान के बाद भी। अब ये तीन चीज़ों में डिवाइडेशन हुआ और बड़ा डिवाइडेशन हुआ। मन में भेद आया, मतभेद तो हुआ ही, मन में भेद आए तो आज अपन देख रहे हैं कि कितना बड़ा डिवाइडेशन है। सब अलग अलग तीन तेरह हो गए। फिर इसके बाद है दो तरह की मान्यताएँ हैं, मैं दोनों बता रहा हूँ एक साथ में, निर्णय आपके हाथ में छोड़ रहा हूँ, जानकारी आपको रहनी चाहिए। दिगंबर लोगों का मानना है कि भद्रबाहू स्वामी के टाइम में 12 साल का अकाल पड़ा। उस समय भद्रबाहू स्वामी के साथ 24,000 मुनि महाराज थे, सब दिगंबर थे। उन्होंने उन 24,000 मुनि महाराज से कहा कि अपन दक्षिण में चले, वहाँ अकाल नहीं है, उत्तर भारत में अकाल है। 12,000 मुनि महाराज इस बात के लिए तैयार हो गए और भद्रबाहू स्वामी 12,000 मुनि महाराज को लेकर के दक्षिण चले गए। 12,000 जो यहाँ रुके रहे उसमें से धीरे धीरे अकाल की स्थिति में कई लोगों ने पद छोड़ करके गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। कुछ लोगों ने जो है कंद मूल फल खा करके जीवन चलाना शुरू कर दिया। कुछ लोग फिर भी टिके रहे, और टिके रहे तो बहुत मुश्किल होने लगी। जब इतनी मुश्किल हुई कि अकाल के समय जब भोजन करके निकलते थे तो रास्ते में उनको पकड़ करके और उनका पेट फाड़ करके उसमें से भोजन निकाल लिया जाने लगा। तब इतनी भीषण स्थिति में कहा गया कि नहीं, आप रात्रि में भोजन लेके जाएं तो पात्र लेना, कोई भी पात्र में आप रात में ले जाएं और अपने वहाँ पर जहाँ आप रहते हैं उपाश्रय में वहाँ पर उसको भोजन कर लें। तो पात्र में भोजन ले जाने लगा रात्रि में और दिन में किया जाने लगा। तब रात्रि भोजन त्याग नाम का एक छठा अनुव्रत शामिल करना, पांच महाव्रतों के साथ छठा अनुव्रत मुनियों को दिया जाने वाला लगा रात्रि भोजन त्याग, जिसमें उनसे कहा गया कि आप रात में इकट्ठा किया हुआ भी नहीं खा सकते। ये बाद में बनाना पड़ा कि जब परिस्थिति बस रात में इकट्ठा किया दिन में खाने लगे तो उन्होंने भद्रबाहू आचार्य आके कहा कि अब तुम्हें छठा अनुव्रत भी लेना पड़ेगा, फिर रात्रि भोजन त्याग। ये स्थिति बनी। फिर जब आते थे रात में तो डर जाते थे, तो कहा कि महाराज थोड़ा सा जो है कुछ ओढ़ करके आया करिए, तो थोड़ी देर के लिए वस्त्र भी स्वीकार कर लिया, उपाश्रय में जाकर के अलग रख देते थे और वैसे रख लेते थे। ये इस तरह की स्थिति बनी। दंड रखना पड़ा भगाने के लिए, कुत्ते वगैरह भौंकते थे तो एक दंड रखना पड़ा, ये दंड भी रख लिया। इस तरह से पूरा का पूरा ये आ गया। भद्रबाहू स्वामी वापस लौटे, उन्होंने कहा ये क्या किया आपने, तो कुछ लोगों ने कहा कि गलती हुई, परिस्थिति बस ऐसा किया है, चेंज कर लिया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा ही है मार्ग, बस ऐसा ही है मार्ग, और मार्ग उत्पन्न हो गया। ये दिगंबरों का कहना है श्वेतांबर मत की उत्पत्ति में। श्वेतांबर मत वालों का क्या कहना है कि पहले सभी लोग श्वेतांबरी थे, भगवान ने उपदेश दिया था इसी तरह रहने का भगवान महावीर स्वामी ने। भगवान महावीर स्वामी के पहले जिन कल्पी थे अर्थात जो दिगंबरी रहते थे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने स्थविर कल्पियों के लिए कहा कि मेरे बाद कोई भी जिन कल्पी नहीं रहेगा, ये श्वेतांबर मान्यता के अनुसार है। और उन्होंने ये कहा कि जिन कल्पी मतलब बैठे हुए हैं, ये जिन कल्पी कहलाएगा, वस्त्र आवरण लेने तो स्थविर कल्पी कहलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि दो प्रकार के होते हैं, जिन कल्पी स्थविर कल्पी। तो उन्होंने कहा कि जिन कल्पी तो भगवान ही हो सकते हैं और कोई जिन कल्पी नहीं हो सकता, सब स्थविर कल्पी रहेंगे, मतलब वस्त्र साहित्य धारण करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि एक बहुत उच्छृंखल व्यक्ति था, उनका उनकी भाषा देखिएगा, एक बहुत उच्छृंखल व्यक्ति था, वो जो है इस चीज़ को नहीं मानता था और थोड़े से वस्त्र धारण करके और घूमने लगा। और एक दिन घूमते घूमते उसके वस्त्र चौराहे पर उतर गए तो वो नंगा हो गया और उसने कहा कि ऐसा ही धर्म है, और इस तरह से दिगंबर मत उत्पन्न हो गया। ये श्वेतांबर मान्यता में दिगंबरों की उत्पत्ति के बारे में लिखा है। अब आपके हाथ में है कि आप किस चीज़ को सही मानेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर डिवाइडेशन है। मुझे ये नहीं करना है कि दिगंबर बड़ा है या श्वेतांबर छोटा है, ये मुझे सिर्फ ये बताना है कि हमें दोनों चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। एक मान्यता इस तरह कहती है कि दिगंबर ऐसे बने, दिगंबर कहते कि श्वेतांबर ऐसे बने, और क्या हुआ होगा उस समय ये पर नहीं। आज इस पर कोई विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। बताते हैं फिर क्या हुआ। इतना डिवाइडेशन तो मेजर हुआ, दिगंबर और श्वेतांबर बने, झगड़ा इतना सब था, इस झगड़े पर दो अलग डिवाइडेशन। फिर क्या हुआ, दिगंबर में भी उप संप्रदाय बनना शुरू, समुदाय बने, कैसे, 20 पंथ, 13 पंथ और 12 पंथ। इस तरह से तीन बनना शुरू। 20 पंथ की मान्यता है कि भगवान को सब प्रकार की खाने पीने की सामग्री चढ़ाई जा सकती है, शासन देवी देवताओं को पूजा जा सकता है, बहनें लोग भी मुनि महाराज जी को पैर दबा सकती हैं, पैर छू सकती हैं, वे चाहे तो प्रक्षाल कर सकती हैं भगवान का। ये सब जो है 20 पंथ में, इसको विषम पंथ कहा गया कि जब विषमताएँ आ गई तो 20 पंथ कहलाया, और 13 पंथ जो भगवान का ओरिजिनल था वो 13 पंथ कहलाया कि ये सब चीज़ें उसमें वर्जी है। ना शासन देवी देवता पूजे जाएंगे, ना भगवान को रोटी दाल सब्जी चढ़ाई जाएगी, ना बहनें लोग भगवान को स्पर्श करेंगी, ना मुनि महाराज जी की सेवा करेंगी, ना मुनि महाराज जी के पैर छुएंगी। ये 13 पंथ। और तारण पंथ में तो 15वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ, तारण स्वामी हुए, उन्होंने कहा कि देव खंडित किए जा रहे हैं इसलिए आवश्यकता नहीं है, अपना आत्मा ही देव है। उन्होंने कहा कि गुरु कोई हो नहीं सकता क्योंकि बहुत मुसीबत है, औरंगजेब सबको मार रहा है, इसलिए गुरु की आवश्यकता नहीं, अपना आत्मा ही गुरु है, बचा लो बचा सको तो शास्त्र। तो सिर्फ शास्त्र को पूजने वाले तारण पंथ का उत्पन्न 15वीं शताब्दी में जो उत्पत्ति हुई ऐसे, और 12वीं-13वीं शताब्दी में 20 पंथ 13 पंथ बने। ये बहुत नए डिवाइडेशन, छोटी छोटी चीज़ों पर हमने डिवाइडेशन की है, हमें जानना चाहिए कि हमने किस तरह अपने को तोड़ा फोड़ा है सड़ी सड़ी बातों पर, जैसे कि आज अपन अभी भी तोड़ फोड़ में लगे हुए और डिवाइडेशन हो रहे हैं बहुत सारे। ऐसे ही श्वेतांबरों में हुआ, उप संप्रदाय बने, एक मूर्ति पूजक बने जिसको देरावासी कहते हैं या मंदिर मार्गी बन गए, फिर दूसरे स्थानीय वासी या कि साधु मार्गी, इनकी उत्पत्ति तो 1653 ईस्वी में हुई, फिर एक 13 पंथी 1817 ईस्वी में हुआ। इस तरह से तीन डिवाइडेशन, मूर्तिपूर्वक मूर्ति पूजक, मंदिर मार्गी, स्थानक वासी और 13 पंथी। इस तरह फिर उनके कई गण और गच्छ बने। 929 ईस्वी में 113 गच्छों के विकास का उल्लेख श्वेतांबर मान्यता में आता है। 113 गच्छ, वहाँ पर गच्छों गण चलते हैं, 2-3 साधुओं का मिलकर गण बनता है, 6-7 साधु मिलकर के गच्छ बन जाता है, तो गच्छ का एक आचार्य होता है। तो इस तरह से 113 गच्छ जो है बने 949 में। आज वर्तमान में कितने हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर तीन उप संप्रदाय तो इनमें भी हैं, मूर्ति पूजक, स्थानक वासी और 13। अब मूर्ति पूजक में भी जो है, जो मूर्ति को आंख लगा लेते हैं या मूर्ति को बिना हाथ का मानते हैं, ये डिवाइडेशन बाद में हुआ, ओरिजिनल डिवाइडेशन है, आंख लगाना नहीं लगाना, पट्टी 4 इंच वाली रखना कि 2 इंच वाली रखना, कितनी बड़ी कितनी चौड़ी रखना, इस पर भी डिवाइडेशन होंगे, पट्टी रखना कि नहीं रखना। सुशील जी कह रहे हैं कि नहीं रखना, कट्टे सा गया पट्टी पर तो नहीं रख रहा। इतनी सड़ी सड़ी चीज़ों में मुझे मतलब ये कहना है कि इतनी सड़ी चीज़ों पे डिवाइडेशन हुआ है कि जिनका कोई सेंस नहीं, धर्म से जिनका कोई संकल्प नहीं, अपना अपना ईगो, अपना अपना अहंकार, इसमें मेन अहंकार है। ये जो डिवाइडेशन में है वो मूल मान्यताएं तो ठीक ही हैं, लेकिन उसके साथ हमारा अपना अपना एक ग्रुप का जो लीडिंग चार है ना, मैं लीड करूँ, तो इस तरह से डिवाइडेशन
होती
है। उसके पीछे भी यही है कि अपने को कैसे सेपरेट करें, हाउ टू सेपरेट, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। ये इस तरह से अपन डिवाइड हुए, बस इतना ही है, और ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, पर डिवाइडेशन अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे कहीं भी डिवाइड है। लिख लेंगे आज तो जनरल शॉर्ट में लिखवा दूंगा, जो भी लिखने में ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए मैंने उनके पास साफ में लिख लीजिएगा कि ये इस तरह से हमारे हमारे मैंने कोई हमसे पूछे कि जैन सेक्ट क्या है, तो हम बताना पड़ेगा हमें कि एक दिगंबर मानता है सिर्फ, क्योंकि है ही, तो कोई ऐसा तो नहीं छुपाया तो जा नहीं सकता, है डिवाइडेशन, लेकिन हम इतनी ये हमें कहना चाहिए उसे कि हम इतनी सड़ी बातों पर डिवाइड हुए हैं, हमें हंसना चाहिए इस चीज़ पर। देखो वो सब चीज़ों पर अगर अपन विचार करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, फिर वो राग द्वेष वाला काम, फिर उसमें राग द्वेष कर रहा हूँ, अगर किसी के फॉल्ट, हर एक चीज़ में फॉल्ट निकल आएगा, हर एक चीज़ में फॉल्ट निकल आएगा। आप अपनी दृष्टि सोचेंगे तो वो पट्टी आपको व्यर्थ मालूम पड़ेगी, और उनको ये मालूम पड़ेगा कि क्या मतलब है, आप कपड़े से पहुँचते तो वही पैर, क्या नाटक मजा रखा, पहन लो इससे अच्छा कह सकते हैं वो, क्या बात है उसमें, हम ही कह रहे हैं वो बाद में कहेंगे, हम कह रहे हैं तो ऐसी गलती निकालना हो तो निकाल सकते हैं, उसमें देख क्या लगने वाली, डिवीजन ही नहीं किसी भी हुआ, अगर हमने कोई एक्सेप्शन स्वीकार किया है तो उनने दूसरे ने कमेंट किया तो उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसे ही करेंगे। एक्चुअली मूल पट्टी का उद्देश्य ये था कि मैं पाप से मौन हूँ, अगर किसी अच्छे साधु से पूछा जाए तो वो ये जवाब देगा कि हमने मुंह पट्टी इसलिए बांधी थी कि पाप से मौन करें, मैं पाप वचन नहीं बोलता, ये पाप से मौन के लिए इंडिकेशन, और कुछ नहीं, अन्यथा अगर उसके लॉजिक में जाएंगे तो वो खुद ही चुपचाप रह जाएंगे। इसके मेरे थे, मैंने कहा आपका थूक उसी पट्टी में चटता है और उस पर वो जमता है और उसमें कितनी जर्म्स पैदा होते हैं। चुप रहने के लिए आप ठीक है, लेकिन ये मेरा अंतरण मामला है। मैंने कहा मैं इन्हीं कर्म का आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप ये मानिएगा कि इसमें भी हिंसा हो रही। आप तो सिर्फ ये कहिएगा कि हम पाप से मौन हैं, इसका इंडिकेशन है हिंसा तो हो रही है, बोलने में हो रही है, तो चाहे हाथ लगा लो चाहे नहीं लगाओ, तो हम पाप से मौन है बस इतने ही कहो। उसमें एकदम लॉजिक मत दो कि हम सही हैं और आपको बांधना चाहिए, ऐसा मत कहो। आप बांधते हैं ये इंडिकेशन है सिर्फ, लेकिन सबको बांधना चाहिए ये मत कहो, नहीं तो गड़बड़ हो। मल्लीनाथ भगवान को स्त्री के रूप
में
ड्रीम अकेला कह दिया तो 24 दिन होता है। ओम के पंचपरमेष्ठी और स्पेशली 24 दिन होता है ड्रीम के। तुम सुनते हो बात में कि नहीं? बस नहीं सुनते उसके दिल में, तुम्हारे दिल में टेप करना ऐसा।